अथ च दुहितरं प्रजापतिर्विश्वकर्मण उपयेमे बर्हिष्मतिं नाम तस्यासु हवाव आत्मजानात्म समानशील गुणकर्म रूप बिर्जोदारान् दश भावयां बभूव कन्यां च जवीयसी मूर्जस्वतीं नाम। इसका शब्दार्थ सब लोग बोलेंगे। अथ श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा। अथ तत्पश्चात च भी दुहितरम पुत्री को प्रजापते प्रजापतियों में से एक विश्वकर्मण विश्वकर्मा नामक उपये में विवाह कर लिया। बरहिष्मतिम वरहिष्मति को तस्याम उसमें ऊह जैसा कि प्रसिद्ध है, वाव आश्चर्यजनक, आत्मजान पुत्रों को आत्मसमान अपने ही सदृश शील चरित्र गुण गुण कर्म कार्य रूप सुंदरता वीर्य बल उदारान जिसकी उदारता दस दस भावयांब भूव उसके उत्पन्न हुई कन्याम कन्या च भी यवी असीम सबसे छोटी रुजस्वती रुजस्वती नामक नाम नाम की अनुवाद। तदनंतर महाराज प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की कन्या बृहस्मती से विवाह किया। उससे उन्हें 10 पुत्र प्राप्त हुए जो सुंदरता चरित्र उदारता तथा अन्य गुणों में उन्हीं के समान थे। उनके एक पुत्री भी हुई जो सबसे छोटी थी, उसका नाम ऊर्जस्वती था। श्रील प्रभुपाद जी महाराज द्वारा तात्पर्य। महाराज प्रियव्रत ने ब्रह्मा का आदेश पालन करके न केवल राज्य भार स्वीकार किया, वरन प्रजापतियों में से प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री से विवाह भी किया। चूंकि महाराज प्रियव्रत दिव्य ज्ञान में निष्णात थे, अतः वे चाहते तो घर लौटकर ब्रह्मचारी रहते हुए शासन भार संभालते, किंतु गृहस्थाश्रम में आकर उन्होंने पत्नी भी स्वीकार की। नियम यह है कि जो गृहस्थ बन जाता है उसे उस आश्रम में पूर्ण रूप से रहना चाहिए, जिसका अर्थ है कि वह अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ शांतिपूर्वक रहे। जब चैतन्य महाप्रभु की प्रथम पत्नी का देहांत हो गया तो उनकी मां दूसरा विवाह करने का अनुरोध किया। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी और 24 वर्ष की आयु में वे संन्यास ग्रहण करने जा रहे थे, तो भी अपनी मां के अनुरोध पर उन्होंने विवाह कर लिया। उन्होंने अपनी मां से कहा, जब तक मैं गृहस्थ आश्रम में हूं मेरी पत्नी होनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन का अर्थ घर में ही बने रहना नहीं होता। वास्तविक गृहस्थ जीवन का अर्थ है पत्नी के साथ घर में रहना। इस श्लोक के 3 शब्द उ ह वाव महत्व के हैं। इनका प्रयोग आश्चर्य प्रकट करने के लिए हुआ है। प्रियव्रत महाराज ने संन्यास का व्रत ले रखा था, किंतु पत्नी स्वीकार करके पुत्र उत्पन्न करने से संन्यास मार्ग का कोई संबंध नहीं है। ये कार्य तो भोग मार्ग को बताते हैं। अतः यह विस्मय की बात थी कि संन्यास मार्ग के अनुगामी प्रियव्रत महाराज ने अब भोग मार्ग को स्वीकार कर लिया। कभी कभी मेरी आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि सन्यासी होते हुए भी मैं अपने शिष्यों के विवाहोत्सव में सम्मिलित हुआ हूं। यहां पर बता दिया जाए कि चूंकि हमने कृष्ण भावनामृत संघ प्रारंभ किया है और मानव समाज में आदर्श विवाह संपन्न होने चाहिए, इसलिए आदर्श समाज की स्थापना के लिए हमें इसके कुछ सदस्यों के विवाह में भाग लेना ही चाहिए, भले ही हमने संन्यास क्यों न स्वीकार कर लिया हो। यह उन व्यक्तियों को आश्चर्यजनक प्रतीत हो सकता है जिनकी रुचि चारों सामाजिक आश्रमों तथा चारों आध्यात्मिक आश्रमों की दिव्य प्रणाली जिसे दैव वर्णाश्रम कहते हैं, स्थापित करने में नहीं है, तो भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दैव वर्णाश्रम की पुनर्स्थापना करनी चाहिए। दैव वर्णाश्रम में जन्म से सामाजिक स्तर नहीं स्वीकार किया जाता, क्योंकि भगवद गीता में कहा गया है कि इसके निर्धारक तत्व गुण तथा कर्म के अनुसार मैं ही करता हूं। कृष्ण भावनामृत के लिए उपयुक्त समाज को बनाए रखने के उद्देश्य से इसी दैव वर्णाश्रम की पुनर्स्थापना की जानी चाहिए। मूर्ख आलोचकों के लिए यह आश्चर्यजनक हो सकता है, किंतु कृष्ण भावनामृत संघ के कार्यों में से यह एक है। श्रील प्रभुपाद की। श्री श्री गौरनिताय राधारास बिहारी एवं श्री सीताराम हनुमान जी महाराज समस्त वैष्णवों के चरणों में सादर नमन करते हुए इस श्लोक के ऊपर यत्किंचित विचार व्यक्त किया जाएगा। जो प्रसंग चल रहा है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और भागवत में तो सभी प्रसंग अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं, किंतु यह प्रसंग एक विशेष रूप का है। विशेष रूप का क्यों है? तो जो प्रसंग चल रहा है तो पूर्व में अपने को सुना जा चुका है कि प्रियव्रत महाराज बड़े उच्च कोटि के परम मनस्वी विदग्ध चतुर चिंतामणि भगवत रस रसिक श्री कृष्ण चरणों में आवेशित चित्त वाले हैं, लेकिन उनकी बात यहां कही जा रही है इसलिए यह विशिष्ट है। इनके प्रसंग को प्रारंभ करने से पहले ही भगवान के परम भक्त चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं। पंचम स्कंद के प्रारंभ में प्रियव्रत महाराज की कथा आती है, विष्णु के नाभि से कमल निकलता है, कमल से ब्रह्मा का जन्म होता है, ब्रह्मा से मनु आदि प्रजापतियों का जन्म होता है, और मनु महाराज के ही पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपद, और उनके तीन पुत्रियां हैं उनकी भी कथा है, तो तीसरे स्कंद में है। और प्रियव्रत महाराज और उत्तानपद महाराज की कथा चतुर्थ स्कंद एवं पंचम स्कंद में है। चार तीन स्कंदों की कथा सुनने के पश्चात जैसे ही पांचवें स्कंद में श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज प्रारंभ करना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं, वैसे ही उनका प्रश्न बनता है। प्रश्न बनता है कि महाराज गुरुदेव, हे मुने, हे ब्राह्मण, हे द्विज श्रेष्ठ, परीक्षित महाराज का प्रश्न है कि श्री प्रियव्रत महाराज तो आत्मा राम है और वे घर गृहस्थी से विरत हो चुके हैं, और फिर उनका इस घर गृहस्थी में कैसे मन लग गया? प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहे रमत यन्मूल कर्म बंध पराभव। जिस घर गृहस्थी के चक्कर में पड़कर व्यक्ति अपना स्वरूप खो देता है, भूल जाता है, एक चीज। और दूसरी चीज कि जिस व्यक्ति ने आत्म स्वरूप को ज्ञान प्राप्त कर लिया है, भागवत भक्त हो गया है, आत्मा में रमण करने वाले हैं, वह व्यक्ति इसको कैसे स्वीकार किया? कथम अरमत मुने, हे मननशील गुरुदेव, हे मननशीलों में श्रेष्ठ श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज, जिस घर ने स्वरूप को भुला देने वाला है उस घर गृहस्थ में वे कैसे रमण किए? कथम अरमत गृह, वे घर गृहस्थी में कैसे रमण किए? न नो न मुक्त संग नाम तादृशानम दिजर्सभ, हे दिजर्सभ, हे सर्वश्रेष्ठ द्विजों में श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज, निश्चित रूप से मुक्त व्यक्तियों के लिए इस तरह का घर गृहस्थी योग्य नहीं है। फिर उस घर गृहस्थी में क्यों आए? महतम खलु विप्रर से उत्तम श्लोक पाद छाया निर्वृत्त चीता नाम न कुटुम्बे स्प्रियामते। यह सत्य है, खलु मन निश्चित रूप से सत्य है कि जिस व्यक्ति का मन उत्तम श्लोक भगवान के चरणों की छाया प्राप्त कर लिया है, तो उस व्यक्ति का मन घर गृहस्थी का स्पर्श नहीं कर सकता है। कुटुम्बे स्प्रिया मति न स्यात्, घर गृहस्थी में उसकी मति नहीं हो सकती है। फिर भी गुरुदेव, इस विषय में हमारा बहुत भारी एक संशय है, एक महान संशय है, उसका छेदन तो आप ही कर सकते हैं। संशयोयम महान ब्रह्म दारागार सुता दिशो सक्त यत सिद्धिर्भूत कृष्णे चमतिरच्युता। जिस घर गृहस्थी में व्यक्ति आकर सब कुछ भूल जाता है, दार में, घर में, सूत में, ऐसे असक्त व्यक्ति को भी देखा गया कि परम पुरुष सर्वाकर्षक सर्वनियंता सर्व आह्लादक श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्णों में उनकी अच्युता मति अभूत, यह सिद्धि देखी गई। तो इस विषय में हमारा बहुत बड़ा संशय है कि जिस घर गृहस्थी में व्यक्ति पड़ता है तो अपना सब कुछ भूल जाता है, खो जाता है, और उस व्यक्ति को देखा गया, सुना गया कि उसकी मति कृष्ण में अविचल रूप से लगी हुई है, कोई उसमें कमी नहीं आई, उसकी भक्ति में सुई के नोक के बराबर भी न्यूनता नहीं आई, कमी नहीं आई, ह्रास नहीं हुआ उसमें, कोई किसी भी प्रकार के विचलन नहीं देखा गया। इसका क्या कारण है? जिस घर गृहस्थी में पढ़कर कर्म बंध पराभव हो जाता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है, लेकिन ऐसे प्रियव्रत महाराज का मन, मति, बुद्धि, विचारधारा कैसे निर्वच्छिन्न अविचल गंगा धारावत, तैल धारावत के समान बनी रहे, इसके विषय में हमारा एक बहुत भारी, बहुत बड़ा संशय है। आप इसका छेदन कीजिए। अब यहां से प्रश्न समाप्त होता है और तत्पश्चात प्रश्नानंतर वैराग मुकुटमणि भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। वे कहते हैं कि वाढ़ मुक्त, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया, वाढ़म बहुत सुंदर, वाढ़ मुक्तम। उत्तर देते हुए कहते हैं कि भगवत उत्तम श्लोक से श्रीमत चरणारविंद मकरंद रस आसेवित चेतस भागवत परम हंस दैत कथम किंचिद अंतराय विहितम स्वम शिवतमाम पदमी न प्रायण हिनवंते। यहां से उत्तर देते हैं, वे कहते हैं कि हे राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारे प्रश्न का हम अनुमोदन करते हैं। वाढ़म शब्द संस्कृत में प्रयोग होता है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, भूरी भूरी प्रशंसा के अर्थ में होता है। लेकिन यह भी ध्यान देने की बात है राजन कि जो भगवत भगवान के उत्तम श्लोकों द्वारा अर्थात ब्रह्मा आदि बड़े बड़े सूर्यों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, उत्तम कोटि के भक्तों के द्वारा जिनका चरित्र गायन किया गया है, उत्तम श्लोकों के द्वारा, बढ़िया सुंदर कीर्ति के द्वारा जिनका जस गाया गया है, ऐसे कीर्तिमान भगवान मुकुंद के श्री चरणों के रस से आवेशित जिनका चित्त हो जाता है, वैसे परमहंस, वैसे भक्त किसी भी स्थिति में, किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में केव न हो जाएं, वे दैत कथा से, उस प्रिय कथा से, उस श्री हरि की कथा से वे वंचित नहीं रहते। प्रायण न प्रायण हिनवंती, वो अपने स्वरूप से विचलित नहीं होते। कहते हैं महताम एक रूपतम, महान पुरुष जो होते हैं वे एक रूप में होते हैं, संपतौ च विपतौ च, इसलिए यह संशय की बात नहीं, यह समझने की बात है, इन पर कोई असर नहीं है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी एवं नारद जी के परम कृपा पात्र हैं। नारद जी के द्वारा उन्होंने परम हंस धर्म के गति पर आरूढ़ होकर उस गति तक पहुंच चुके हैं जहां उनको जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मा जी और इंद्र के कहने से उन्होंने वहां से आया और संसार की परिस्थिति को देखते हुए राज कार्य को संभाला, तो उसमें अविचल रूप से उनकी भक्ति बनी रही। यह विशेष रूप से ब्रह्मा जी एवं नारद जी की कृपा का ही पहचान था। ऐसा कहते हुए कहते हैं अब कई चीज के बीच में वर्णन करते हैं, फिर ब्रह्मा जी उनको बहुत सुंदर उपदेश से समझाए भी हैं कि हे राजन, तुम अगर यह सोचते हो कि घर गृहस्थी बाधक है तो ऐसी बात नहीं है, और तुम तो स्वतः ही आत्मजयी हो, तुमने अपने हर एक इंद्रियों पर संयम रखा है, तुमने तो आत्मा में रमण करने की क्रिया को प्राप्त कर लिया है, तो भला तुम्हारे जैसे आत्मजयी पुरुष के लिए ये घर गृहस्थी क्या बिगाड़ लेंगे, तुम्हारे लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम तो सहज में ही इसमें रहते हुए पार कर जाओगे। बड़ी सुंदर उपदेश दिए, फिर धीरे धीरे समझाते हुए उन्होंने ब्रह्मा जी के बात में आए और ब्रह्मा जी के बात में आकर घर गृहस्थी को स्वीकार किया। यहां इसमें वर्णन है, इसमें वर्णन करते हैं इस श्लोक में, जिस श्लोक को अभी प्रकृत किए प्रस्तुत किए जो अभी विद्यमान है, तो इसमें कहा गया कि अथ च दुहितरम प्रजापतेर विश्वकर्मण उपये मे बर्हिष्मतिम नाम तस्यासु हवाव आत्मजानात्म समान शील गुण कर्म रूप बीर्जोदारान दस भावयाम बभुवा कन्यम च जवीयसी ऊर्जस्वतीम नाम। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप विवाह की करो, तो उन्होंने विवाह किया और विवाह करने के पश्चात उनके पिताजी तो चले गए तपस्या करने के लिए, और वे बड़े आराम से घर गृहस्थी में रहते हुए इसका देखभाल करने लगे, राज कार्य का समयोचित कार्यभार संपन्न करने लगे। तो वे अपने समान 10 पुत्र उत्पन्न किए और 10 पुत्रों में से श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि 3 तो सन्यासी हो गए, बचे 7 और एक छोटी बेटी हुई जिसका नाम था ऊर्जस्वती। तो 10 पुत्रों में से 3 साधु हो गए और बाकी राजकार्य संभाले। और इस तरह महाराज प्रियव्रत हजारों लाखों वर्ष तक घर गृहस्थी का उपभोग करते रहे, लेकिन उनकी मति कृष्ण से कभी सुई के नोक के बराबर विरत नहीं हुई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो सतत कृष्ण सेवा में लगे रहते थे और जो कोई भी काम किए तो उन्होंने नारद जी एवं ब्रह्मा जी के आदेश से किया। उन्होंने आत्मतृप्ति के लिए राज्य भार को नहीं संभाला, यही मुख्य कारण था। इसमें एक ही महापुरुष के जीवन में दिखा गया कि परम हंस और एक बड़े उच्च कोटि के सद्गृहस्थ और बड़े उच्च कोटि के भगवत भक्ति मार्ग रसिक उपासक, इन दोनों चीजों को इनके चरित्र में देखा जाता है। इस प्रसंग से श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के द्वारा समझाया है कि वर्ण आश्रम की व्यवस्था की गई है, दैविक वर्ण आश्रम, दैविक वर्ण आश्रम जो भगवान के द्वारा व्यवस्थित है। भगवान ने भी इसको गीता में कहा है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः, ये चारों वर्ण मेरे द्वारा ही सृष्ट हैं और गुण कर्म के आधार पर मेरे ही द्वारा इनका विभाजन भी किया जाता है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः, गुण और कर्म के आधार पर विभाजन किया जाता है। और तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि, उनके कर्ता भी मुझे ही समझो। गुण और कर्म के आधार पर इन चारों वर्णों का मुझे ही कर्ता समझो। फिर भी कह रहे हैं नीचे वाले अंतिम पंक्ति में कि कर्तारम अव्ययम, अव्ययम कर्तारम, अव्ययम अकर्तारम, फिर भी मैं उसके अव्यय करता हूं, उससे मैं परे हूं। चार वर्णाश्रम क्यों रखा गया? चारों वर्णाश्रमों का अपना अपना महत्व है। वर्णाश्रम का बहुत भारी महत्व है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि यदि वर्णाश्रम को हटा दिया जाए तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। तात्पर्य में ऐसा लिखते हैं, वर्णाश्रम धर्म ही एक ऐसा है जो कि पशु और मनुष्य में अंतर ज्ञापन कराता है, विदित कराता है, बोध कराता है, परिचय कराता है, धर्म बतलाता है। क्योंकि पशु वर्णाश्रम का पालन नहीं कर सकता है, इस वर्णाश्रम का पालन मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए इस समाज को चलाने के लिए वर्णाश्रम की बहुत भारी आवश्यकता थी। यही कारण है कि भगवान कह रहे हैं कि ये चारों वर्ण मेरे द्वारा सृष्ट हैं और सृष्ट होने के पश्चात गुण कर्म के आधार पर उनका विभाग मेरे द्वारा ही किया गया। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम वर्णाश्रम में चार वर्ण हैं और चार ही आश्रम हैं। चार वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और आश्रम हैं वर्ण और आश्रम, वर्णाश्रम। वर्णा नाम आश्रम इति वर्णाश्रम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनको तो वर्ण कहते हैं जो सत्व प्रधान होते हैं, उनको ब्राह्मण कहते हैं। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं ब्राह्मणो मुख मासे। ब्राह्मण जो होते हैं वो भगवान के मुख हैं। मुख से निश्चित होने के कारण ब्राह्मण कहे गए, अर्थात सत्व में सन्निहित होने के कारण उन्हें ब्राह्मण कहा। या ब्राह्मण का अर्थ है ब्राह्मण वेद तम जनाति थी ब्राह्मण। ब्राह्मण कहते हैं वेद को, उसको जो जानता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। आ ब्रह्म जनाति थी ब्राह्मण, ऐसा भी लिखे हैं इसमें, उसको ब्राह्मण कहते हैं। अर्थात सत्व प्रधान को ब्राह्मण कहते हैं। वह प्रथम वर्ण है, भगवान के मुखारविंद से जो प्रथम निश्चित उच्चरित वर्ण हुआ उसको कहते हैं ब्राह्मण। और दूसरा जो कि रजो प्रधान होता है उसको कहते हैं क्षत्रिय। और तीसरा शूद्र, जो रज और तम मिश्रित, रज तम मिश्रित प्रधान जो होते हैं उनको कहते हैं वैश्य, और तम प्रधान जो होते हैं उनको कहते हैं शूद्र। तो इनको कहते हैं वर्ण। अब रहा आश्रम। आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, गार्हस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सर्वश्रेष्ठ संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों का भगवान के द्वारा ही विभाजन किया गया है और सबका अपना अपना अलग अलग महत्व है। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, वैश्य का क्या कर्तव्य, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है और शूद्र का क्या कर्तव्य है, इसका भी भगवान ने ही विभाजन किया है 18वें अध्याय में। ब्राह्मण का कर्तव्य है वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान लेना, दान देना भी। छह क्षत्रिय का वैश्य का काम क्या है? तो कह रहे हैं राज्य करना। राज्य पर कोई क्षति कर रहा है उन दुष्टों से त्राण करना, इसलिए उनको क्षत्रिय कहते हैं। छत को धारण करें और छत से त्राण करें उसको क्षत्रिय कहते हैं। छत व्रण तम त्रायते इति क्षत्रिय, जो छत से त्राण करता है उसको क्षत्रिय कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, मैंने तो पढ़ा नहीं है इस पर, किंतु अपने गुरु महाराज से सुना है कि उन्होंने क्षत्रिय की उपमा सैनिकों को दिया है। आज वर्तमान युग में उन्होंने क्षत्रिय की उपमा सैनिकों को दिया है। तो जो छत से त्राण करता है उसको क्षत्रिय कहते हैं। तो क्षत्रिय का कर्तव्य है कि राज करे और छत से त्राण करे, देश की रक्षा करे, अन्य सारी प्रजाओं के प्रजा पुत्र के समान देखे और इनकी रक्षा करे, इसलिए उनको क्षत्रिय कहा गया। कर लेना भी उनका कर्तव्य है, छत से त्राण करना भी उनका कर्तव्य है, छत और दुष्टों का दमन करना भी उनका कर्तव्य होता है, और राज करना ये क्षत्रियों का धर्म है। और वैश्य का कर्म भगवान ने बतलाया, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, और ये वैश्य के कर्म है। इस प्रकार परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, ब्राह्मण का हो गया, क्षत्रिय का हो गया, वैश्य का क्या है? तो खेती करना, गायों की रक्षा करना, शुद्ध लेना, शुद्ध देना, ये वैश्य का काम है। और शूद्रस्य शूद्र का काम है कि इन तीनों वर्णों के अपने से ऊपर वाले इन सब की रक्षा सेवा करें, और ऐसे सेवा करने वालों को कहते हैं वर्णाश्रम। इसको कहते हैं वर्ण, इसको कहते हैं वर्णाश्रम। आने अपने अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए अपने अपने आश्रमों में स्थित रहते हुए जो जीवन निर्वाह करते हैं उनको कहते हैं वर्णाश्रमी। इस बात को सुनकर आजकल के शूद्रों के मन में एक आक्रोश है, किसके प्रति? भगवान के प्रति, वेद के प्रति, ऋषियों के प्रति और ब्राह्मणों के प्रति भी, क्योंकि हम तो बहुत गांवों में घूमे हैं, देखे हैं, लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जानबूझकर लिख दिया है ऐसा। जब भगवान सबके लिए समूहम है, समूहम सर्वभूतेषु कहते हैं कि मैं सबके लिए सम है, हम सबके लिए सम है, तो वे फिर विषमता कैसे करेंगे? लेकिन नीचे वाले वाक पर वे विचार नहीं करते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठ गुण कर्म विभाग से, इस पर विचार ही नहीं करते हैं, केवल इसको बोलते हैं कि भगवान तो कहते हैं कि समूहम सर्वभूतेषु, मैं तो सबके लिए सम हूं, वे तो सबके लिए बराबर हैं, फिर कोई छोटा और बड़ा कैसे हो गया? और इस पर नहीं विचार करते हैं कि गुण कर्म विभाग सत्य, सारे कार्य गुण और कर्म के आधार पर ही विभाजित हुए हैं। तो बड़ा उनके मन में आक्रोश रहता है, किंतु आक्रोश से हटकर और तत्व से विचार करें तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान कभी झूठ बोले हैं और न बोलेंगे और न बोलते हैं, वे जो कुछ कहते हैं सत्य, क्योंकि वो सत्य गिरह हैं, ऋत गिरह हैं, उनका वचन कभी असत्य नहीं हो सकता है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य सयोनि निहितम च सत्य सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना कहा गया है, क्योंकि वो झूठ बोल ही नहीं सकते हैं, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो सबके लिए बराबर हैं। लेकिन गुण और कर्म के आधार पर विभाजन करने वालों में भी वही सम है, इस पर विचार करना चाहिए। जो छोटे लोग हैं, जो अपने को मानते हैं कि हम शूद्र हैं, हम अंत्यज हैं, उनका यह कर्तव्य विचार करना, किंतु विचार नहीं करते हैं, बल्कि आक्रोश करते हैं, हम किसी से कम नहीं, हमें उसमें क्या अंतर है, बल्कि यहां तक कहते हैं कि तुम्हारे शरीर में और हमारे शरीर में क्या अंतर है, उसमें भी हड्डी, उसमें भी मांस, उसमें भी खून, उसमें भी पंच विकार है, हमें भी है, ऐसा तर्क करते हैं। तो इसका मतलब कि भगवान भांग पीकर बोल दिए गीता में, शराब वराब पी लिए थे क्या भगवान? और अर्जुन भी शराब पी लिए थे कि उतने बड़े ज्ञानी भक्त भी चुपचाप सुन लिए? नहीं, इसमें वैज्ञानिक रहस्य है। भगवान जानते हैं कि प्रकृति के अंदर तीन गुण हैं और गुणों के वशभूत होकर विद्वान लोग भी आचरण करते हैं, और फिर मूर्खों की तो बात ही क्या है। स्वस्याः प्रकृतेः, अपने अपने प्रकृति के अनुसार सभी लोग आचरण करते हैं। तो जिसकी जैसी प्रकृति है उसका गुण के अनुसार कर्म दे दिए, कि ब्राह्मण का यह, वैश्य का यह, क्षत्रिय का यह, शूद्र का यह। तो शूद्र का काम दिया उन्होंने कि तीनों वर्णों की सेवा करे और वो सहज में ही पार हो जाएगा, उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्वे स्वे कर्मण विरतः संसिद्धिम लभते नरः, जिस कर्म को, जिस पद को ब्राह्मण वेद पढ़कर प्राप्त करेगा, क्षत्रिय राज धर्म का पालन करके करेगा, वैश्य कृषि गोरक्षा वाणिज्य आदि कर्तव्य को संपन्न करके प्राप्त करेगा, उसी पद को शूद्र केवल सेवा करके प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं कि शूद्र का महत्व कम है, ना, भगवान के हृदय में, भगवान के मन में, भगवान के बुद्धि में सुई के नोक के बराबर भी भेद नहीं है। क्योंकि अगर भेद होता तो भगवान कैसे कहते कि ममैवांस जीव लोक, ऐसा नहीं कह सकते। ममैवांस जीव भूत, जितना जीव समूह है सब हमारा अंश है, ऐसा कहकर यह बतला रहे हैं कि सब हमारे लिए समूह, हम सर्व, सब प्रिय हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। गुण के दृष्टि से भी है, वो मात्रा के दृष्टि से भले कम है, क्योंकि जीव बद्ध है और भगवान मुक्त है, भगवान समर्थ है और जीव अल्पज्ञ है, असमर्थ है, किंतु भगवान सबके लिए बराबर है। यही कारण है कि उन्होंने कहा कि श्वे श्वे कर्म, श्वे श्वे कर्मणि अभिरत, अपने अपने कर्मों में अभिरत होकर संसिद्धिम लभते नरः, संसिद्धि को प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। गृहस्थ है तो गृहस्थी का आचरण करते हुए, भगवान का भजन करते हुए भगवान को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो भगवान के भजन करते हुए, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए भगवान को प्राप्त कर सकता है। वानप्रस्थी है, अगर भगवान का भजन करता है उसमें रहकर, तो वो भी भगवान को प्राप्त कर लेगा। संन्यास आश्रम में स्थित होकर भगवान का भजन करता है तो वो भी भगवान को प्राप्त करता है। केवल नाम से कुछ भी नहीं होने वाला होगा, क्योंकि भगवान ने यहां कह रहे हैं कि कर्मणि अभिरत, कर्म में नियुक्त रहते हुए, संलग्न रहते हुए, ये नहीं कि बस खाली वस्त्र पहन लिए और बस जाके गांजा पीने लगे, सिगरेट पीने लगे, चरस पीने लगे, आंख लाल करके सोए हुए हैं हिमालय में तो उसी से मिल जाएंगे ना, संभव ही नहीं है। हरि माश्रित, घर को छोड़कर, गृहस्थी को छोड़कर, वन में जाकर भगवान का आश्रय लेकर जब भजन करेंगे तभी प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तत्साधु मन्ये असुरवर्ज देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम वनम गतो यद हरिमाश्रय। हरिमाश्रय, अगर संन्यास आश्रम हो गए, घर गृहस्थी इस जंगल को छोड़ दिए और वन में चले गए तो वहां गांजा पीकर सो जाएंगे, इससे भगवान नहीं मिलेंगे। आप लाल पहनो चाहे काला पहनो, इसे नहीं मिलने वाले हैं। भभूति रंग लो या चाहे भभूति मत रंगो, भगवान मिलेंगे हरिमाश्रित, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। तो हरिमाश्रित क्यों कह रहे हैं? स्वे स्वे कर्मणि अभिरत, अपने अपने कर्म में रहकर निज धर्म भावित, तत्तात गच्छ, हे तात तुम गच्छ, वहां जाओ, आराधया धोक्षज पाद पद्मम, हे बेटा तुम जाओ और मधुबन में जहाँ भगवान नित्य विराजमान रहते हैं वहाँ उनकी आराधना करो, निज धर्म भावित, अपने धर्म में स्थित होकर। तो सन्यासी का भी धर्म है, ब्रह्मचारी का भी धर्म है कि अपने अपने कर्म में रहते हुए भगवान को प्राप्त करेंगे। और यही बात गृहस्थी पर भी है, ये नहीं कि गृहस्थी के लाइसेंस लेते खाली भोग भोगते रहे। गृहस्थी के लाइसेंस ले लेने के पश्चात भी मनुस्मृति कहती है कि स्त्री संभोग करने के उतना ही आपका अधिकार है जितना आपको संतान उत्पन्न करने का अधिकार है। जब तक आप संतान प्राप्त करना चाहते हो तब तक तो स्त्री से मिल सकोगे, पुण्य मिलेगा, किंतु अगर संतान नहीं चाहते हो और संभोग भोग करते हो तो नरक जाना निश्चित है, वो अपनी स्त्री हो चाहे पराई स्त्री हो, इसमें कोई भेद नहीं है। शास्त्र शास्त्र के रूप में कहता है, शासनाति इति शास्त्र, शासनाति शासन करता है जो उसको शास्त्र कहते हैं, संसते इति शास्त्र, उसमें कोई समझौता नहीं है, जो है वो फैक्ट है। लेकिन बेईमानी यहां मंच से बैठकर हम लोग करते हैं। गृहस्थ बैठ गया तो गृहस्थ का पक्षपात कर देगा, विरक्त बैठ गया तो विरक्त का पक्षपात कर देगा, लेकिन भगवान पक्षपात करने वाले नहीं है, समूहम सर्वभूतेषु, वो सबके लिए बराबर है। वो कहते हैं कि श्वे श्वे कर्मणि अभिरतः, अपने अपने कर्म में रत रहकर, हमारा कर्म क्या है तो ऊपर बतला दे गीता में, उसके अनुसार हमें वर्णाश्रम का पालन करना पड़ेगा। और जब हम वैसा करेंगे तो निश्चित रूप से संसिद्धिम लभते नरः, वह व्यक्ति गृहस्थी में हो या ब्रह्मचारी आश्रम में हो या संन्यास आश्रम में हो या वानप्रस्थ आश्रम में हो, वो प्राप्त कर लेगा। लेकिन कर्तव्य तो करना पड़ेगा, अपने अपने कर्तव्य को करते हुए दत्तचित रहेंगे, संलग्न रहेंगे तब। ऐसा नहीं कि अपने मन के हम कुछ करें या प्राप्त कर लें, जैसा कि इस प्रसंग से मिल रहा है। इस श्लोक में तो नहीं ऐसा वर्णन किया गया है कि भक्ति का, लेकिन पीछे वाले से संबंध है और आगे वाले से भी संबंध है को किस तरह भक्ति किए हैं। महाराज प्रियव्रत एक सदा गृहस्थ हैं और वे अपने आश्रम में रहते हुए भी भगवान को प्राप्त किए और भगवान के भक्तों में उनका उच्च कोटि का स्थान है। तकें उन्होंने घर गृहस्थी में रहते हुए अपने धर्म का पालन किया, और अपना धर्म क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम भोक्ता नहीं हैं, हम कृष्ण के दास हैं। और इसको याद करते हुए, अपने कर्तव्य को पालन करते हुए, हम गृहस्थी में रहें या कहीं भी रहें, निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। शास्त्र अनुमोदित कार्य करेंगे, गुरुजनों के निर्देशानुसार कार्य करेंगे तो हम निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे, और हम अपने मन बुद्धि विवेक के अनुसार काम करेंगे तो निश्चित रूप से बंध जाएंगे और बार बार जन्म मरण रूप चक्र में पड़ते रहेंगे। अतः इसका निष्कर्ष यह है कि हमें सतत अपने कर्म में लगे रहना है और बड़ों जनों के, गुरुजनों के या वरिष्ठ वैष्णवों के निर्देशानुसार भजन करना आवश्यक है, तभी हमारा काम बनेगा। और नहीं तो एकांतकी भक्ति उत्पात आयी वकल्पते, उत्पात के कारण भी बन जाते हैं। तो अपने अपने कर्म में लगे रहेंगे, इसके लिए हमारे वरिष्ठ लोग निर्धारण करते हैं, गुरुजन, वरिष्ठ वैष्णवजन या जो इष्ट मित्र हैं उनसे सलाह लेकर अपने मार्ग में अग्रसर होना चाहिए। और यही सरल उपाय है, यही सुगम उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अपने अपने कर्म में लगे रहिए, तत्पर रहकर संसिद्धि तो मिल ही जाएगी, क्योंकि वाह ये बड़ा विचित्र शब्द है, क्योंकि यह विचित्रता में डाल दिया है कि कहां विरक्ति और कहां गृहस्थी। बड़ा वितर्क करने वाला शब्द है। तो इसका निदान यही है कि हम अपने कर्म में रहें, और अपने कर्म में रहें तो ये अपने मन से नहीं, अपने बड़ों के निर्देश के अनुसार। तब नहीं तो हमारा मन कुछ दिन उस काम में लगाए रखेगा, तब तक उसको छोड़कर कहीं और चला जाएगा। तब तो फिर हम गए जहन्नम में। और जब मन नहीं लग, बड़े के अनुसार करेंगे, मन नहीं भी लगेगा तो उसे बतलाएंगे तो कहेगा ठीक है जबरदस्ती इसको करो, तो फिर मन भग कर वहीं आकर लग जाएगा। इसीलिए जैसे भगवान कहते हैं कि स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते, तो अपने अपने संसिद्धि को प्राप्त करने का यही उपाय है कि जो जहां है वहीं रहकर अपने अपने कर्म का पालन करे, और भगवान की जैसी सेवा प्राप्त है वैसी सेवा संपन्न करे। दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो घर में रहेगा तभी, या वन में रहेगा तभी, अर्थात गृहस्थी में रहेगा तभी, या विरक्ति में रहेगा तभी वो भगवान को प्राप्त कर ही लेगा, जैसे प्रिय व्रत महाराज ने। हरे कृष्ण। कीजिए
हरे कृष्ण। छोटा सा देवी कुंती जो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को प्रथम स्कंध भागवत में, तो फिर वो इसी भगवान को जो लोग कहते हैं कि भगवान पक्षपात करते हैं, समहम सर्वभूतेश आपने बताया इसके ऊपर, अगर विश्वनाथ जी इसके ऊपर छोटा सा एग्जाम्पल देते, उदाहरण देते हैं कि भगवान किसके ऊपर पक्षपात नहीं करते, इसको कैसे समझा जा सकता है ना। जैसे सूर्य प्रकाश देते हैं, वो तो सबके लिए समान देते हैं, लेकिन लोग कैसे कैसे समझते हैं। जैसे चार उदाहरण देते हैं, सूर्यकांत सेड़ा होती है, तो सूर्यकांत सेड़ा में जो धर्म होता है, गुण होता है, वही सूर्य में होता है, जिसके कारण जब सूर्य प्रकाश देते हैं तो फिर वो तुरंत ही उनके गुण को ग्रहण कर लेता है। और फिर कहते हैं लेकिन चोर जो होते हैं उनके लिए तो अंधेरा जो होती है वो कहते हैं अंधेरा बढ़े ज्यादा, ताकि सूर्य अगर आएंगे तो फिर उनके काम में बाधक बन जाएगा, और इसके लिए सूर्य को अपना शत्रु समझते हैं। लेकिन सूर्यकांत सेड़ा कहते हैं सूर्य मेरा साक्षात मित्र है। और एक उदाहरण वो देते हैं कि जैसे एक पक्षी होती है उल्लू,
जिसको दिन में दिखाई नहीं,
दिन में उनको दिखाई नहीं पड़ता, ये वो कहते हैं कि लेकिन दिन में वो भागता रहता है, जैसे रात आए तो फिर रात आएगा तो फिर रात में वो आ जाता है। और एक उदाहरण देते कि अंधा के लिए दिन क्या है और रात क्या है, उनके लिए वो उदासीन व्रत रहता है, इसलिए वो भगवान पक्षपात करते हैं अथवा नहीं उसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो इस संसार में लोग होते हैं ऐसा, जो नास्तिक होते हैं और आस्तिक भी नहीं होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, उनके लिए भगवान है या नहीं उनके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान है, सबके लिए समान तरीके से कृपा देते हैं। यही उदाहरण चार उदाहरण देते हैं, ठीक है ना, विश्वनाथ जी कहते हैं।
और इस पर भी एक और इसमें बारीकता है, जो आप कह रहे हो ठीक है, अच्छा है। भगवान की कृपा भी दो प्रकार की है, एक विशिष्ट कृपा, एक सामान्य कृपा। लेकिन वो लेने के ऊपर है। सामान्य रूप से तो भगवान सब पर कृपा करते ही हैं, दिन दिए हैं, रात दिए हैं, आकाश दिए हैं, हवा दिए हैं ना, चंद्रमा दिए हैं, सूरज दिए हैं। तो जो भजन करेगा उसके लिए भी, जो नहीं करेगा उसके लिए भी, आस्तिक नास्तिक दोनों के लिए दिए हैं ना, तो भगवान का समान कृपा है। और विशिष्ट कृपा उनकी अनुभूति होती है कि भगवान कि जब किसी जीव पर कृपा होती है या किसी महात्मा की जब किसी जीव पर कृपा होती है तो भगवान के चरण में आ जाते हैं, भगवान के भजन करने लगते हैं, तो भगवान के उस स्वरूप की अनुभूति होने लगती है और जीव को अपने स्वरूप की अनुभूति होने लगती है, यह विशेष कृपा है। तो आप जो कह रहे हैं वही बात है, ये भी ये हमारे गुरु महाराज ऐसा बतलाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती जो दिए वो ठीक है, ये भी ठीक है। आपका क्या प्रश्न था? सुनाई पड़ेगा।
गुरु और अथॉरिटी के निर्देश में रहकर कार्य करेंगे तो मन नहीं भी लगेगा तो वो बोलेंगे जबरदस्ती करो और अपने मन के अनुसार करेंगे, लेकिन कई बार मन में ऐसा प्रश्न उठता है कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, शास्त्र भी पढ़ रहा हूँ, सोला माला भी कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं सेवा करना चाहता हूँ वो सही है, जो बड़े कह रहे हैं वो तो अपने हिसाब से कह रहे हैं, अभी मैं अपने हिसाब से कुछ सेवा करना चाहता हूँ।
तो इसका मतलब कि बड़े आप मान ही नहीं रहे उनको, एक तरफ बड़े भी और उनसे अपना विचार भी अच्छा, तो इसका मतलब कि हम उनको बड़ा नहीं मान रहे हैं। बड़ा मानने का मतलब हुआ कि गुरु हमसे बड़े हैं और गुरु कह दिए कि यही करना है तो यही करो, भजन करने को कह रहे हैं कि तुम ये करो, और आपका मन लग रहा है कि हम भागवत पढ़ें और वो करेंगे नहीं तुम डीटी सेवा करो, तो आपका धर्म बनता है कि डीटी ही सेवा कीजिए, भले आपकी रुचि उसमें है लेकिन आपका कर्तव्य है कि हम वही करें।
जैसा दिखाई पड़ता है कि अगर ये सेवा करेंगे, जैसे आपने बोला कि मैं भागवत पढ़ूंगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, संस्था को भी फायदा होगा,
तो ये आप न सोच रहे हैं, गुरुदेव नहीं ना सोच रहे हैं, तो गुरुदेव के अनुसार आप ठाकुर जी की सेवा करेंगे तो गिरने का चांस नहीं है, और अपने हिसाब से अगर खूब बढ़िया से भागवत भी पढ़ लेंगे तो कथा भी करने लगेंगे तो ब्रह्मचारी से गृहस्थी भी में जा सकते हैं। ये गृहस्थ बनते क्यों हैं ब्रह्मचारी लोग, ये गुरु जी का तो केवल चुतिया बनाते हैं। हमको 25 साल हो गया इस कौन में आए हुए, लेकिन इस बॉम्बे मंदिर में एक दिन आज प्रथम दिन क्या दूसरा दिन बोल रहा हूं, असीम भैया और हम दोनों आदमी एक ही साथ घर छोड़ के भागे हैं, गए वहां कहां चंडीगढ़ गए थे ना, चंडीगढ़ से देवकी नंदन प्रभु इनको यहां लाए, हमको भी ला रहे थे तो भैया हमको नहीं छोड़े, गौरकृष्ण भैया कहे तुम चलो वृंदावन, हमको वो अपने साथ रखे और इनको कहे कि आप जाओ देवकी नंदन प्रभु के साथ, तो ये फुल पैंट पहनकर उस समय भागे थे, सब दूसरे को दे दिए, एक भक्त को श्याम कृष्ण दास जी को दे दिए। तो सबका अधिकार अलग अलग है, ये बड़ों के निर्देश से भजन कर रहे हैं तो जस के तस बने हैं, हम बड़े के अनुसार चल रहे हैं तो जस के तस बने हैं। इस कौन में हमारे सामने की बात है कि बहुत अच्छे अच्छे आए, बहुत तेज बुद्धि के लोग आए, अपने मन और बुद्धि के अनुसार चला के किए तो वो चले गए जहन्नम। तो अपने मन और बुद्धि के अनुसार हम भजन कर ही नहीं सकते, कुछ काल के लिए ऐसा लगेगा कि हम ठीक कर रहे हैं, समझ रहे ना, जैसे बुझने वाला दीप भभकता है तो ज्यादा प्रकाश होता है लेकिन वो तुरंत बुझ जाता है, इसलिए भक्ति अगर सचमुच करने हैं तो गुरु जैसा कहते हैं वैसा करना चाहिए, वरिष्ठ वैष्णव जैसा कहते हैं वैसा करना चाहिए, नहीं तो वास्तव में हमारा पतन हो जाएगा। ये नाम जप करते रहेंगे लगेगा कि नाम जप हो रहा है लेकिन हम कहीं और चले जाएंगे, समझ रहे हैं ना, जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते चलाते ड्राइवर कभी कभी सो जाता है, तभी गाड़ी कुछ देर तक चलती रहती है, हाँ तब तक कुछ देर के बाद जाके कहाँ चली जाती है, चाटी में चली जाती है, चली जाती है कि नहीं। तो उसी तरह अपने मन के भक्ति करने पर ब्रह्मचारी हैं तो गृहस्थी में चले जाएंगे और गृहस्थी में भी ऐसा हो जाएंगे कि मंदिर और भगवान सब बेकार लगने लगेंगे, केवल अपने मन के करने के कारण ब्रह्मचारी लोग गिर रहे हैं, नहीं तो एक से एक सुंदर वैष्णव आते हैं, अगर गुरु के निर्देश के अनुसार भजन करें तो गिरने का चांस ही नहीं है, अपने मन के अनुसार भजन करते हैं इसलिए गिरते हैं, रहते हैं मंदिर में देखने में आता है कि सेवा करते हैं लेकिन उसमें अपनी कुछ ना कुछ नमक और मिर्च मिलाए रहते हैं, झांको भीतर, इसमें झांको, पूछना नहीं है कहना नहीं है। यही कारण है कि गिरते हैं। और दूसरा सबसे बढ़िया सुंदर काम है कि जहां कहीं किसी को भी भजन करना है, आगे बढ़ना है, तो अपने वरिष्ठ और गुरु के निर्देशानुसार भजन करें, वो नहीं गिरेगा। उसमें विचलन आ सकता है, चढ़ाव उतराव आएगा, लेकिन उस स्थिति को बतलावे तो ज्यों के त्यों प्रकार रहेगा। श्वे श्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धि लभते न हो जाएगा, प्राप्त कर लेगा। तो आप विचार कर लीजिए कि हमको कैसा करना चाहिए और झांकिए देखिए कितना कौन कर रहा है। अब नाम रहकर मैं उचित नहीं समझता हूं कहना, लेकिन हम 25 साल में बहुत देखे हैं। और श्रील प्रभुपाद की, वैष्णव ठाकुर की, गौरनिताई श्री राधारास बिहारी सीताराम हनुमान जी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री राधे श्याम।